ഓം ശാന്തി. ഓം ശാന്തി. ആജ് കി ഇസ് സുന്ദർ സഭ മേ ഫരിശ്തോ കി ഗാദറിംഗ് മേ ഹൻസ് മണ്ഡലി മേ ബാബാ കെ ബച്ചോ മേ ഇസ് സങ്കൽപ്പ മേ ക്യാ സമായ ഹൈ ഇസ് സമയ ഓർ ടോപിക് കെ തോ വാസ്തവ മേ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് കരനെ കി ജറൂരത്ത് നഹീ ഹൈ ക്യോകി ആപ്കോ തോ ഗീത സുനെ സേ ഹി ടോപിക് കാ പതാ ചൽ ഗയാ ഹോഗാ. മേ ഹമേശാ കഹതി ഹൂ ഹമാരേ ഭായി യാ ബഹനെ ജോ ഭീ കോയി ഗീത സംഗീത റെക്കോർഡ് ബജാതേ ഹൈ മുരളി സേ പഹലേ യാ ക്ലാസ് സേ പഹലേ ഉൻകെ രജിസ്റ്റർ മേ ജോ ഫിലിം ചലനേ വാലി ഹൈ ഉസ്കാ ടേലർ പഹലേ സേ ദിഖാ ദേതേ ഹൈ. യെ ഗീത കിസ്നേ ഗായാ ഹൈ ആപ്കോ മാലൂം ഹൈ? ഖുശിയോ സേ ഭർ ദി ജിന്ദഗി ഹമാരി ആപ്കി ബലിഹാരി പ്രഭു ആപ്കി ബലിഹാരി. ആപ്കോ മാലൂം ഹൈ കിസ്നേ ഗായാ ഹൈ? ആപ് കഹോ നാ മേനെ ഗായാ ഹൈ, ഹംനെ ഗായാ ഹൈ. ഹൈ ഖുശി ജീവൻ മേ നാ? ഓർ റിവാജി രീതി സേ ഭീ റോസ് ജ്ഞാനി ചായ അജ്ഞാനി സമ്പർക്ക വാല യാ സംബന്ധ വാല വ്യവഹാര മേ ആപസ് മേ മിലൻ മേ മീറ്റിംഗ് മേ ആജകൽ കി ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഗുഡ് മോർണിംഗ് കി ബാത് നഹീ. ഹിന്ദി ഭാഷ മേ കൗൺ സി ബാത് യൂസ് കർത്തേ ഹൈ? ക്യാ കഹതേ ഹൈ? ആപ്സേ മിൽകെ ബഡി ഖുശി ഹുയി, യഹി ബോൽതേ ഹൈ നാ? പ്ലീസ് ടു സീ യു, ആപ്സേ മിൽകെ ബഡി ഖുശി ഹുയി. ഭാവ ക്യാ ഹൈ ഉസ്കാ? സിർഫ ക്യാ വ്യക്തി സേ മിൽനേ കി ഖുശി ഹുയി യാ അന്ദരൂനി ഖുശി ഹുയി? ഉൻസേ മിലാ ക്യാ ഹൈ? റിവാജി ഖുശി സേ ശബ്ദ ശബ്ദ കി ബാത് നഹീ ഹൈ. ജാനതേ ഹോ യാ നാ ജാനതേ ഹോ, ഗാദറിംഗ് മേ കിസി സേ മിലേ, കിസി നേ പരിചയ കരായാ, പ്ലീസ് ടു മീറ്റ് യു, ആപ്സേ മിൽകെ ബഡി ഖുശി ഹുയി, പർ ജാനതേ ഭീ നഹീ ഹൈ യേ കൗൻ ഹൈ. വോ ഏക് ഭാഷ അഥവാ യാ കഹേ സഭ്യത या एक प्रकार का बोलचाल की भाषा, परंतु खुशी शब्द जरूर यूज करते हैं. खुशी तब होती है अंदर की खुशी जब कुछ मिल जाता है. कुछ मिलता है तो खुशी होती है, प्राप्ति होती है तो खुशी होती है. कुछ गुम होता है, घाटा पड़ता है, खुशी चली जाती है. ऐसे है बराबर अनुभव. हम खुश नसीब हैं, खुश नसीब है. लास्ट मुरली बाबा की थी तो हमारा भाग्य कितना ऊंचा है. खुशनुमा हमारा चेहरा सदा खुश है. न नसीब कितना ऊंचा है, ये अंदर के शब्द हैं। अंदरूनी खुशी वो है जो अंदर के दुख को दूर कर देवे। अंदरूनी खुशी वो है, कोई बीमार होता है, ठीक होने लगता है, उसका चेहरा बताता है कि ठीक हो रहा है, उसके संबंधी वर्णन करते हैं अभी बहुत अच्छी अवस्था है। तो ऐसे ही जैसे तन की बीमारी, वैसे मन की भी बीमारी। तन की बीमारी भी दुखी करती है, मन की बीमारी भी परेशान करती है। प्रकृति के टेम्पररी सुख सुख देते हैं, परंतु साथ साथ दुख भी देते हैं, क्योंकि गारंटी नहीं है कि वो सदा सुख चलेगा साथ में। वो सब साधन रहेंगे, परंतु साधना करने वालों को भगवान ने ये गारंटी दे दी है, पक्की प्रॉमिस कर ली है कि मैं तुमको सदा सुखी बनाऊंगा। उसकी खुशी है कि तन तंदुरुस्त रहता है, मन प्रसन्न संतुष्ट रहता है, संबंध में स्नेह और हार्मनी रहती है, समाज में समान जागृत होता है, संपत्ति तो अथाह है। बाबा ने इतना संपत्तिवान अथवा धनवान बना दिया है, ज्ञान का धन, गुणों का धन, शक्तियों का धन, और सबसे बड़ी बात है कि धनी बनाने वाला जो सब प्रकार का सुख और खुशी देने वाला, सुख का सागर मिल गया, अपना हो गया। तो जो सुख देने वाला, दया का सागर दुख हरने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला, आज की मुरली को ही देखो, टोटल हर चीज एकदम दुख के सागर से निकाल करके सुख के सागर में ले जाने वाला है। तो जिसको ये रियलाइज होवे कि मैं दुख की दुनिया से पार जा रहा हूं, या पार होते हुए भी अंदर का वो निश्चय नहीं है, नशा नहीं है, तो सुख की दुनिया में जाते भी दुख के दिनों का वर्णन करते रहते हैं। तो वो दुख के दिनों के वर्णन में ऐसे होता है जैसे सुख की कोई वैल्यू नहीं, अनुभव होगा ही नहीं। तो इसीलिए ये दोनों ही चीजें, नशा है रूहानी नशा निश्चय के आधार पर, और दोनों ही चीजों की वैल्यू है, अंदर की खुशी, अंदरूनी खुशी और अतीन्द्र सुख की प्राप्ति का रूहानी नशा, प्राप्त कराने वाले के साथ संबंध कितना हमारा ऊंचा है। मानो आपके पास 500 रुपए का नोट है, उसमें से दोनों साइड जो नोट के हैं किस नोट किस साइड की वैल्यू ज्यादा है, नोट की 500 वाला नोट है या 1000 वाला होता तो भी, तो किस साइड जो करेंसी है वो कौन से साइड की वैल्यू ज्यादा है। अगर एक भी थोड़ी खोटा है तो सारा खोटा है। ऐसा नहीं है कि एक साइड जो है वो फालतू है, फालती है, दूसरा साइड राइट है। वो करेंसी करेंसी नहीं रहती, वो जाली नोट हो जाता है। तो इसी प्रकार से रूहानी नशा रूह को होता है, बाहर का दिखावी नशा विनाशी नशा देह अभिमानी को होता है। तो मैं आत्मिक स्थिति में जितना स्थित हूं, जितना अपने आप को भगवान की संतान, कितना भाग्यवान हूं, ईश्वर की संतान हूं जिसने मन की सब इच्छाएं पूरी कर दी हैं। भगवान मुझे भाग्यवान बनाता है, ईश्वर हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर देता है। तन का रोग का बंधन खत्म, मन की अशांति खत्म, धन की तो कोई इतना अथाह हर प्रकार का अविनाशी धन है, चाहे ज्ञान धन है, चाहे गुणों का धन है, चाहे शक्तियों का धन है, चाहे संकल्प का खजाना है, चाहे समय का खजाना है। सुख साधना जो बाबा ने दिए है, वो सब जो बंधन थे वो बंधन से मुक्त किया है, तो सचमुच खुशी होती है जो स्वतंत्र हो जाता है। कहा जाता है पराधीन जो दूसरे के बंधन में अथवा अधीन है, पराधीन स्वप्ने सुख नहीं, सपने में भी पराधीन को सुख नहीं महसूस होता। जेल में बैठा हुआ व्यक्ति खुश होगा, सुखी होगा। तो हम आत्माओं को जो माया रावण ने सब आत्माओं सीता रूपी आत्माओं को जेल में डाल दिया, तो जब से रावण राज में आए दुख का द्वार खुल गया और दुख से भंडार भर गया, संसारी दुख का सागर कहने लगा। सारा संसार दुख के सागर से, बाबा कहते हैं विषय सागर से, विषय विकारों ने हमको दुख दिया, अज्ञानता ने दुख दिया, विकारों की असक्त प्रभाव ने हमको दुख दिया, अभाव बढ़ना शुरू हुआ, जितना जितना प्रभाव बढ़ता गया उतना उतना अभाव बढ़ता चला गया, उसी हिसाब से स्वभाव बदलता चला गया। जो हमारा धन था वो मिसयूज होने लगा, गुण संपत्ति थी स्वमान में टिकने की, महानता निर्माणता में थी, अब निर्माण के बदले अहम भाव में, अहंकार में निर्माणता खत्म हो गई, महानता भी खत्म हो गई। तो अंदर की खुशी नहीं रहती, हमेशा अहंकारी मनुष्य को मान मिले, पोजीशन मिले, मंगता बना देता है। किसी भी प्रकार का देह अभिमान हमको मंगता बना देता है, भिखारी बना देता है। आत्माभिमानी अधिकारी बन जाता है, दाता बन जाता है। तो हम बच्चों को बाबा ने सिंपल बातें बता के समझा के 8 प्रकार के बंधन से मुक्त कर दिया। अष्टरत्न की माला में पिरोने के लिए बास्केट में रख दिया। अभी मैं पिरोया कैसे जाऊं, वो निश्चय और नशा, स्नेह और संबंध का धागा वो पक्का मजबूत हो। तो तन का बंधन कभी भी रोगी बन सकते हैं। शरीर के बंधन में देह अभिमान में रोग भी समाया है और अभिमान भी समाया है। प्रकृति क्योंकि तमो प्रधान है, हेल्थ की गारंटी नहीं है, एक्सीडेंट हो सकता है, किसी भी प्रकार का प्राकृतिक प्रकोप हो सकता है। तो तन का बंधन, मन का बंधन, धन का बंधन है तो भी सुख है तो भी चिंता है, छिपा के रखेंगे, अनाउंस नहीं करेंगे कि दूसरे को के धन को समझेंगे इनके पास बहुत है, पर अपना अनाउंस नहीं करेंगे। नहीं है तो भी चिंता है तो भी चिंता है, दोनों प्रकार के बंधन में बंधी आत्मा। डर है कोई चुरा न लेवे, धोखा कोई ना दे देवे। तो अभी बाबा ने ऐसा अविनाशी धन दे दिया, ज्ञान धन के साथ साथ धन कमाने की विधि भी सुंदर बता दी। रोज बाबा दान रूप में भी देता है, वरदान के रूप में भी देता है, दाता के रूप में भी देता है, टीचर के रूप में भी देता है, वर्षे के रूप में भी देता है। सारे भंडार खुले हुए हैं अविनाशी धन कमाने के। रूहानियत की स्थिति में रहे तो सब द्वार खुले, देह अभिमान में रहते हैं तो सब द्वार बंद हो जाते हैं। बाहर से लगता है भंडार मेरा भर रहा है, अंदर से खाली होता जाता है। मान बढ़ रहा है, अंदर डर होता है मेरा मान कम ना हो जावे, मेरी महिमा कम ना हो जावे। तो बाबा हम बच्चों को अपनी संपत्ति जो ईश्वरीय संपत्ति है, अविनाशी संपत्ति है, उसका मालिक बना रहे हैं। तो तन मन धन, चौथा बंधन है जन यानी समाज का बंधन। दुनिया क्या कहेगी, जनता क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। बनना तो मुझे कोई हाई पोजीशन वाला है, पता नहीं मत मिलेगी, वोट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मंगता बना देती है, मत दो मत दो मत दो। भगवान कहते हैं श्री मत लो, श्री मत लो, श्री मत लो। वो देने आया है। नाम कितना ऊंचा, ईश्वरीय संतान है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं। तो एक एक बाबा की टाइटल, बाबा की महिमा जो है, जो पिता की महिमा है वो बच्चों की महिमा है। जैसे लौकिक में जो बाप का सरनेम है वो जन्मते ही बच्चे का सरनेम हो जाता है, तो हम भी जैसे ही भगवान के बच्चे बनते हैं, भाग्य का द्वार खुल जाता है, इतना भाग्यवान बना देता है, जो भाग्य की लकीर खींचने की हाथ में देता है कलम, परंतु भाग्य विधाता हमारा बन गया। तो जनता का भी कोई डर नहीं है, मनुष्य मत हमको मालूम है भटकाने वाली है, ईश्वरीय मत श्रेष्ठ बनाने वाली है। समान जागृत हो गया है, डर खत्म हो गया दुनिया का, क्योंकि मालूम है कि जो डर था वो झूठा नाम कमाने का था, झूठी शान बढ़ाने का था। अब हम निर्भय हो गए कि हम आत्मा का सदा नाम आत्मा ही है, और वो आत्मा महात्मा देव आत्मा बन रही है। अगर आत्मा नाम भी रहता है तो महानता बढ़ती जाती है, और मांगना नहीं पड़ता है। सौगात में, वरदान में, गिफ्ट रूप में बाबा देता है हमको, उसके पास जाने की बात भी नहीं, वो खुदा है, खुद आ जाता है देने के लिए, इसलिए उसको खुदा कहते हैं। खुद आता है क्योंकि देखता है कि मेरे बच्चे दुखी हैं और मेरे से दूर हो गए हैं। तो अभी आप देखो, एक कुछ थोड़ा दिन पहले, एक महीना होगा हो गया होगा, बाबा ने कहा जब मेरे बच्चे बहुत मेरे से दूर और दुखी हो जाते हैं और मैं बहुत थोड़ी आत्माएं परमधाम में रहती है तो मैं बेचैन हो जाता हूं। अरे भगवान, बाबा बेचैन हो जाते हैं, कितना मेरे को नशा करना चाहिए कि भगवान मेरे बगैर, कितना उसका मेरा मेरे साथ प्यार है और कितना उनको मेरा ओढ़ना, जिसको आज बाबा ने कहा मैं फिकर है, फिकर नहीं है वास्तव में, कंसर्न है, मैं बच्चों को सदा के लिए सुखी बना दूं। घर बैठे हमारे भंडारे भरने आते हैं, तो और आते ही कितना, जो पहले संबंध में संबंध नहीं था, दुख का बंधन बन गया था, तन का बंधन, मन का बंधन, धन का बंधन, समाज का बंधन, संबंध का भी बंधन, किसी को माँ बाप का बंधन, किसी को हस्बैंड का बंधन, किसी को वाइफ का बंधन, किसी को कोई ना कोई संबंध में दुख है ही है, बंधन है, डर है उनसे, मन जो मन का बंधन बंधा हुआ है, कोई वैसे कोई हाथ पकड़ के रस्सी बांध के नहीं बिठाती, आगे नहीं बढ़ने की हिम्मत होती है, करेज और कॉन्फिडेंस जागृत होवे, स्वमान में कोई जागृत नहीं, स्वमान देता नहीं है, अपमान करते भी बंधन बना देते हैं। इसीलिए कलयुग में संबंध बंधन है, जीवन बंधन है, और सतयुग में संबंध में जीवन में आते ही जीवन मुक्त, वो संबंध है। संबंध सुख देता है, सपोर्ट देता है, बंधन दुख देता है, सहयोग नहीं देता। फिर गवर्नमेंट का भी बंधन है, हर प्रकार का, चाहे सतयुगी दुनिया में यथा राजा रानी तथा प्रजा, कोई नियम नहीं पालन करे, डर रहता है और या दंड मिलता है, दंड देना पड़ता है। बाबा ने इतना हमको नेचुरल मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया, मर्यादा पाने में ऑटोमेटिकली श्रीमत पर चलना सिखा दिया, तो कोई प्रकार की हमेशा हर प्रकार की खुशी मर्यादा में रहने वालों को किसी प्रकार का बंधन नहीं है, डर नहीं है, धर्मराज का भी डर नहीं है। प्राप्ति उसका इनाम मिलता है जो मर्यादा पर चलता है, नियमों पर चलता है। फिर अगर कोई पहले भक्ति कर रहे हैं, किसी को फॉलो कर रहे हैं, डर रहता है गुरु को छोड़ेंगे ना श्राप मिल जाएगा। अभी गुरु जी से तो वरदान मिलना चाहिए, पर डर रहता है, बंधन रहता है। बाबा ने स्वधर्म में टिका दिया, रिलीजन इज माइट, स्वधर्म में टिका कर कितनी शक्ति बदे दी, निर्भय बना दिया, निर्वैर बना दिया, किसी से वैर विरोध नहीं है। फिर है अनेक जन्मों के कर्मों का बंधन, अनेक जन्म के कर्म के बंधन से मुक्त हो गए और कर्मातीत बना रहे हैं बाबा। कर्म ऐसे करे, ऐसे नहीं कि कर्म छोड़ दिया, कर्म योगी बना रहा है। योग में कर्म और कर्म में योग, ये नहीं कि कर्म करे तो तब योग लगाना, नहीं, योग युक्त स्थिति में जो कर्म करते हैं उससे श्रेष्ठ कर्म वो ऑटोमेटिकली होता है, शक्ति भरा होता है, प्रेरणा देने वाला होता है, सुख देने वाला होता है। और ऐसा कर्म सिखा रहे हैं, योग ऐसा सिखा रहे हैं जो विकर्मों को भस्म करने वाला, विकर्मा जीत कर्मातीत, कर्म बंधन से मुक्त अकर्मी बना रहे हैं। मतलब क्या है कि कर्म इतना नेचुरल है जिसमें दुख और सुख का कोई शब्दी कंट्रास्ट है ही नहीं, सुख ही सुख है, हर कर्म इतना नेचुरल पवित्र और शुद्ध है, तो इसीलिए कर्म इंद्रियों को शुद्ध बना रहे हैं। कर्म इंद्रियों से कर्म होता है, तो हमारी तो दसों ही कर्म इंद्रियां, दसों ही इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां। हम राजा दशरथ किसी बंधन में नहीं बंधते, दस सिर वाले को मारते हैं जरूर, खत्म करते हैं, पर इस शरीर रूपी रथ के राजा पांच ज्ञान इंद्रिया, पांच कर्म इंद्रिया। ज्ञान इंद्रिया माना ये जो दृष्टि है, देखती है व्हाइट है कि ब्लैक है कि ब्लू है, पीला है कि नीला है, फूल का रंग गुलाबी है कि हरा है, पत्ते का रंग कैसा है, आंख पहचानती है, आंख के द्वारा पहचानते हैं, इसको ज्ञान मतलब। कान ने सुना, समझ या बेसमझी का मिसअंडरस्टैंडिंग या अंडरस्टैंडिंग बड़ी, जिब्बा से कुछ खाया खट्टा है कि मीठा है इसका ज्ञान मिला, बोला तो पता चला वरदान के बोल बोले हैं, किसी ने बोला या मैंने बोला, सुखदाई बोल बोले या दुखदाई बोल बोले, फूल बरसाए या कांटे बरसाए चुभाए, दूसरे को भी पता है और खुद को भी पता चलता है, त्वचा है ठंडा है कि गर्म है, सर्दी है कि गर्मी है। ये पांच ज्ञान इंद्रिया है, बाकी हाथ पैर रोज के नियम की स्वच्छता का साधन, ये कर्म इंद्रिया है। तो बाबा ने हमारे जीवन में न केवल राजा को, पर राजा के साथ जो रानियां हैं तीन, मैं राजा हूं मालक हूं, परंतु सतयुग में राजा रानी दोनों राज करते हैं, एक नहीं बैठता। लक्ष्मी ने श्री लक्ष्मी श्री नारायण दोनों राज करते हैं। तो जितनी आत्मा शुद्ध सत्व प्रधान सुखी है, उसी आधार से ही ये कर्म इंद्रियां शुद्ध सत्व प्रधान रहती है। इतनी शुद्ध हो जाती हैं, उसकी निशानी अभी बाबा बताते हैं कि तुम बच्चों को मैं सिखाता हूं कि तुम कमल फूल समान कैसे रहो, प्रवृत्ति में रहते पवित्र योगी कैसे बनो। ये स्वमान जागृत करते हैं, रूहानी नशा है जो कोई सन्यासी नहीं कर सकते। वो घर में रहते प्रवृत्ति में रहते, ये सिर्फ गृहस्थियों की बात नहीं है, ये कुमार कुमारियों के लिए भी है। ये शरीर क्या है, कितनी मिट्टी है इसमें, पानी और इमोशन कितने, ब्लड कितने, ये तालाब ही तो है। किचड़ तो देहभान से ही आता है। तो ये नहीं कि जो ग्रस्ती है उनको कमल फूल सुमन बनाता है, इस गृह में इस घर में रहने वाली आत्मा को कमल फूल सुमन बनाता है। तो कमल नयन, कमल हृदय, चरण कमल, हस्त कमल, ये रूहानी नशा है कि बाबा ने हम बच्चों को दुनिया में रहते दुनिया से न्यारा कैसे बना दिए। कौन है हमारा ऐसा जीवन बनाने वाला जो अभी से ही बाबा बच्चों को, जो जिनका जीवन दिव्य श्रेष्ठ है, हृदय से निकलता है, ये तो देवता है। शरीर के साथ रिश्ता होते भी फरिश्ता है। तो बाबा हमारा जीवन इस संसार जंगल में रहते हुए भी, कीचड़ में रहते भी कमल फूल समान बनाते हैं। तो इसलिए हर एक देवता के हाथ में ये चार चीजें हैं ही हैं। कौन सी? स्वदर्शन चक्र, शंख, गदा और कमल का फूल। ये चार सब्जेक्ट बाबा डायरेक्ट हमको पढ़ाने आता है। गॉड फादर मेरा पिता खाली नहीं है, ये रूहानी नशा है कि सारे विश्व का पिता, ज्ञान का सागर, ज्ञान सूर्य बाप, उसकी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी का मैं स्टूडेंट हूं। रूहानी नशा है किसका मैं बच्चा हूं, किसकी पालना के अंदर पल रहा हूं, सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान मुझे कौन दे रहा है, तीसरा नेत्र खोलने वाला मेरा कौन है, और सत्य बता के पढ़ाई पढ़ा रहे हैं तो क्या पढ़ा रहे हैं, सतगुरु सत्य और असत का भेद बताते हैं, श्रीमत दे करके श्रेष्ठ कर्म करता सिखाते हैं, सदी गति सदगति के अधिकारी बना देते हैं। तो बाबा हमको पहले अंदर रूहानी नशा रहता है, पालना किसकी है, गॉडली विश्वविद्यालय में पढ़ रहा हूं, नशा चढ़ता है। अभी आप देखो, ये दिल्ली की बात है, एक माता जी 85 साल की थी, रोज सवेरे बस्ता लेके, नोटबुक लेके, कॉपी लेके आती थी, थोड़ा जितना मुरली के नोट्स लेने का शौक था। तैयार हो करके पोतरे दोतरे घर में हैं, कहते थे उठ जाओ स्कूल जाने का टाइम हो गया है, मैं अपनी यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ। मैं बुढ़ी माता 85 साल 90 साल की, मैं बुढ़ी हूँ ये नहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रही हूँ। ये रूहानी नशा है, हम पढ़ाई कौन सी पढ़ रहे। सच्चिदानंद हमको सत बता के अतीन्द्र सुख का झूला झूला रहे, खाली सुख नहीं दे रहे, अतीन्द्र सुख का अनुभव करा रहे, खाली खुशी नहीं दे रहे। खुशी होती है थोड़ी देर की होती है, सुख है गारंटी नहीं है मनुष्यों के पास, पर आनंद का तो कोई कॉन्ट्रास्ट ही नहीं है। सुख के बदले सुख दुख में बदलता है, साहूकार गरीब कभी होता है, कॉन्ट्रास्ट है, बच्चा बूढ़ा बनता है, यानी कॉन्ट्रास्ट है जीवन में हर बात का, परंतु आनंद का कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं, क्योंकि सच्चिदानंद द्वारा ये आंतरिक आनंद मिल रहा है, उस अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं, झूले में बिठा दिया है और दर्शन करा दिया अपने भाग्य का, दर्पण हमारे हाथ में दे दिए। तो इतना सुंदर दर्पण दिया है जिसमें मुझे स्वस्थिति में स्थित होकर के मुझे ही अर्पण मैंने जीवन किया, मुझे ही दर्पण बना दिया। दर्पण की क्वालिटी क्या होती है? स्वच्छ का मतलब क्या है? दर्पण का मतलब क्या है? दर्पण दर्शन कराता है। तो बाबा कहते हैं जितना जितना तुम स्वदर्शन करते जाएंगे, दर्शनीय मूर्त बनते जाएंगे। और दर्पण बनने का मतलब पहला ही सब्जेक्ट है, बार बार अपना चेहरा देखो, आत्मिक स्वरूप में स्थित रहो, आत्मदर्शन से ही प्रभु दर्शन होगा, आत्मदर्शन से ही आत्मा ने अनुभव किया सारे चक्कर का, शरीर ने बदली हो जाता है, एक ही शरीर ने 84 जन्मों का चक्कर का अनुभव नहीं किया, पर एक ही आत्मा ने सारे चक्कर का अनुभव किया है। और अपना इस समय वो अभ्यास इतना पक्का सच्चा दर्पण बनने का है। दर्पण की खूबी क्या है? बाबा ने पहले हमको दर्पण दिया है और फिर दर्पण बना दिया है, ज्ञान दर्पण दिया है, और न केवल दर्पण दिया है, अपना चेहरा देखने के लिए क्या चाहिए? दर्पण किसी अंधे को दो, दर्पण काम करेगा? नहीं काम करेगा ना। तो बाबा ने दर्पण भी दिया और नेत्र भी दिए। कितना मेरा सौभाग्य है कि मुझे त्रिनेत्री बना दिए, स्वदर्शन कराते कराते त्रिकालदर्शी बना दिए, तीनों लोकों का ज्ञान दे करके, घर का ज्ञान दे करके, कर्म क्षेत्र का ज्ञान दे करके, सूक्ष्म वतन की पहचान और अनुभव करा के त्रिलोकी नाथ बना दिए। ये रूहानी नशा है, ये रूह को अनुभव होता है। परंतु मैं पूछ रही थी अपने आप से, पूछे मैं सचमुच दर्पण बनाऊं? दर्पण में चेहरा तब दिखाई देगा, भले आंखें भी हों, दूसरे की आंख से अपने आप को नहीं देख सकते, अपनी आंख चाहिए। बाबा ने मेरी आंख खोली है, मुझे जगाया है, मेरी नेत्र की ज्योति बढ़ाई है और लाइट बढ़ाई है। मतलब दर्पण में कितना भी अच्छा दर्पण हो, अगर अंधेरा है नाइट भी आंखें भी अच्छी हैं, चेहरा नहीं दिखाई देगा, अंधकार मिटा दिए, ज्ञान सूर्य प्रगटया, ज्ञान अंधेरे विनाश, ये मेरा अंधेरा दूर हुआ है, ये रूहानी नशे है। पहले भटक रहे थे पर विशेषता क्या है दर्पण की, अपने आप से मैं पूछूं, दर्पण काम करता है देखा तो अपना अपने सामने रखते हैं, अपने दाग नजर आते हैं, दर्पण अंतर्मुखी बना देता है। ये रूहानी दर्पण हमको अंतर्मुखी बनाता है, हमारे आंतरिक स्थिति कैसी है, दाग कहाँ पर है, दोष कहाँ पर है, दुख कहाँ छिपा हुआ है, परचिंतन कितना है, पर मत पर कितने चलते हैं। ये अंतर्मुखी होने से दुख दूर होना शुरू हो जाते हैं, अंतर्मुखी सदा सुखी, और फौरन चेकिंग होती है। दर्पण सिर्फ दिखाता नहीं है दाग कहाँ है, दिखा के क्या कराता है, फौरन रुमाल लेके साफ करेंगे, रुमाल नहीं होगा ना तो 6 गज का रुमाल भी यूज करेंगे, शर्ट भी यूज कर लेंगे। तो स्वाप परिवर्तन भगवान ने हमको सिखाया है, स्वचिंतन बाबा ने हमको सिखाया है, पर चिंतन से दूर किया है। स्वदर्शन, जब स्वदर्शन करने लगे तो प्रभु दर्शन, घर का दर्शन, स्वर्ग का दर्शन, स्वचिंतन से परचिंतन खत्म हो गया, श्रीमत पर चलने से परमत खत्म हो गई, पर जब अंतर्मुखी बनते हैं तब सदा सुखी बनते हैं, खुशी होती है, बच गए संसार के प्रभाव से, अभाव खत्म होता गया, स्वभाव बदलता गया, मनुष्य देवता बनते गए, शक्ल तो वही है, अक्ल बल गई, बढ़ गई, दिव्य बुद्धि मिल गई, दिव्य बुद्धि का वरदान मिल गया। दूसरी बात, दर्पण की विशेषता है कि दर्पण दूसरे का दाग, दर्पण दिखाता है दाग है पर अपने पर दाग नहीं लगने देता। आपकी मैल शीशे पर लग जाती है क्या? दिल दर्पण है, अगर मेरे दिल पर दूसरे के दोष छप जाते हैं तो दर्पण नहीं हूं। क्रिटिसिज्म, कमेंट्स, करेक्शन, ये जो सी देखते देखते ये सारे सी से चलने वाले शब्द कर्म में, वचन में आ जाते हैं, दृष्टि में आ जाते हैं। तो हमारे मन की वृत्ति शुद्ध हो जाती है। मैं जब राजा बन जाता हूं तो रानियां मेरे साथ काम करती हैं, तीनों रानियां काम करती हैं, कौशल्या काम करती है, राम को जन्म देती है, राम राज आती है, सुमित्रा मेरे संस्कार सबके साथ मैत्री भाव के हैं, खुश रहते हैं, खुश करते हैं, सुमत पर चलने वाले हैं, कुमत पर नहीं चलते, खुदा को अपना दोस्त बना लेते हैं, मैत्री भाव दूसरों से बढ़ जाता है, मन मंत्रा नहीं बनता, मंत्रा बन के क्यों, क्या, कई, कैसे, किसने कही, समझ आ गई कि ये क्या मंत्रा और क्या कही, मन क्यों क्या कही में चला गया, कहकई बन जाएगी। 14 साल राज डिले हो गया, तो मेरा राज डिले हो जाएगा, राज तो मुझे मिलना है, राजा तो हम बनने वाले अभी भी और पीछे भी होंगे, पर ना भी राजयोगी बन सकेंगे ना सतयुग के राजा बनेंगे, त्रेता के बनेंगे, बनेंगे तो सही। तो राजा और रानी तीनों, प्रकृति और पुरुष दोनों ही जब मिल करके राज करते हैं तो सतयुगी राज आ जाता है, रावण राज समाप्त हो जाता है, फूलों का बगीचा बन जाता है, कांटों का जंगल खत्म हो जाता है। बाबा हमको ही रूहानी नशा है, हम भगवान के बगीचे के फूल है, ये रूहानी नशा है, जिस्मानी कोई जिस्म के फूल की बात नहीं है। रूहे गुलाब, रूहानियत की खुशबू वातावरण में फैलने लगती है, पर पहले कमल बनेंगे तब, अर्पण जीवन को करेंगे, समर्पण रहेंगे, दर्पण बन जाएंगे, गुलाब के फूल बन जाएंगे, कांटे भले नीचे रहे, गुलाब के फूल को कांटे नहीं लगते, गुलाब के फूल को कांटे चुभते हैं, तो कांटों की दुनिया में रहते खुश नसीब हैं, खुश रहते हैं, बाबा ने हमारा जीवन कैसे बना दिया, रूहानियत की सुगंध फैलाने वाले बना दिया। मंदिर में मेरी अगरबत्ती पीछे जलेगी, दीवा पीछे जलेगा, अभी मेरा दीवा जगा दिया, मुझे ही दीपक बना के लाइट हाउस बना दिया, ये रूहानी नशा है। रूह को अंदर ये फीलिंग आती है, अनुभव होता है, निश्चय होता है, तो जितना जितना समझ बढ़ती है, बुद्धि दिव्य बनती है, कौशल्या बन जाती है, तो कोई बात नहीं, कितने भी तपस्या करनी पड़े, 14 साल तपस्या हुई, कल्याण ही हुआ, रावण का विनाश करने का कारण तो वही बना, कहने में तो वनवास मिला परंतु रावण का खात्मा उसी हिसाब से हुआ। पर भगवान को फिर भी बंदरों से प्यार है, आज का कि बंदरों की सेना लेता हूं, ये बंदरों ने क्या किया, हम नकलची बन गए थे, बंदर होता है नकलची, मंदिर में रहने वालों को बंदर को ये रूहानी नशा है, बंदर जैसी चलन वाले को जिसमें हर सब विकार है, कामी भी है तो क्रोधी भी है, गुर गुर करता है, मोह तो मृदा से भी योग नहीं छोड़ता, लगन संबंध नहीं तोड़ता, मरा हुआ बेबी भी अपने पास रखेगी जब तक नया बेबी नहीं बनता। हम भी क्या करते हैं, शरीर छोड़ जाने वालों के जूते संभाल के रखेंगे, उनके कपड़े संभाल के रखेंगे, उनकी बातों को संभाल के रखेंगे, अंदर पास्ट हो गया, उस पास्ट को अपने अंदर पास रख लेते हैं, वो पास नहीं होने देता, बाबा के पास नहीं रहने देता, पास्ट को पास नहीं करने देता। तो बाबा ने हमको जिनमें कल्याण का संस्कार नहीं था, वो कहानी बच्चों छोटे स्कूल में पढ़ते, स्कूल में जब थे तो छोटे थे, कहानी पढ़ी थी कि एक हमारी बरसात बहुत पड़ रही थी, तो बंदर भी आकर के पेड़ पर बैठा, डाली पर बैठा, उसी डाली पर चिड़िया ने घोंसला बनाया हुआ था, बच्चों को बहुत प्यार से छत्र छाये में रखा था, घोंसले में रखा हुआ था। उसने कहा, मेरे भाई तेरे को तो आप मनुष्य जैसे हाथ पैर है, क्यों नहीं एक छत्र ऐसा बना ले, देखो ना सर्दी में कितने कांप रहे हो, तेरी भी रक्षा, तेरे बच्चों की भी रक्षा। बंदर को आया अहंकार, छोटी सी चिड़िया मुझे शिक्षा देती है, मारा हाथ घोंसले पर, घोंसला ही तोड़ दिया। तो अहंकारी मनुष्य, विकारी मनुष्य, हम ऐसे बंदर बन गए थे। अच्छी शिक्षा मिलती है तो भी क्रिटिसाइज करते हैं, बाबा ऐसा क्यों कहते हैं, बाबा ने ऐसे कैसे कहा, ये कैसे हो सकता है। बड़े बुद्धिमान अपने आप को समझते हैं। कोई अच्छी मत देता है बड़ा, तो फौरन कहते हैं आप तो मेरी कमियों को ही देखते हो। भावना हम नहीं रहती है। तो हमारे संस्कार चलन बंदरों जैसी नकलची बन गए थे। अगर दूसरी चाल होती है बंदर की, नकलची है। नकल इतनी फर्स्ट क्लास करता है। पांडव वन की बात है, पांडव वन में पहले बाहर आंगन में रखते थे, क्योंकि भोजन में ही खाते थे। कोई देर से आता था तो नेचुरली है, फिर अपने आप चलो पड़ा है भोजन, ढक्कन खोला दाल भी ले ली, बटन ढक्कन खोला रोटी भी ले ली। बंदर तो देखता है इस बात को। तो बंदरों ने भी प्रैक्टिकल में ढक्कन खोल के, कड़छी उठा के, दाल लेकर के कटोरी में डाल के खाई। ये बंदरों की चाल है। बंदर शिक्षा मिले तो ले नहीं सकते, तभी कहते हैं सीखवा को दीजिए, शिक्षा उसको दो जिसको शिक्षा अच्छी लगे। तो भगवान की शिक्षा हमको कितनी अच्छी लगती है, बंदर से मंदिर बना देते हैं। तो इसलिए बंदरों ने पत्थर पर नाम लिखा, पत्थर तल गए। क्या मतलब है, हम पत्थर बुद्धि जो बन गए थे। एक तो बाबा कहता है मैं पत्थर से पारस बनाता हूं, कौड़ी से हीरा बनाता हूं। तो जो पत्थर बुद्धि बन गए थे, जब बाबा का नाम दिल पर छप गया तो संसार रूपी भव सागर से नाव पार हो गई। ये पत्थर पर भगवान का नाम कहते, तो कुछ पढ़े लिखे तो है नहीं, पर ज्ञान तो अनपढ़े ही ज्यादा सुनाते। अच्छा क्यों, उन्होंने अनुभव में फौरन लाया है। ज्ञानी को जब अंदर अहंकार जल्दी आ जाता है, ज्ञान सुनाने में होशियार होते हैं ना। गंगा बन के, अच्छा बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान सुनाया, पर बाबा कहता है योग अग्नि बढ़ाओ। पानी तो कपड़ा धोते धोते खुद ही मैला हो जाता है, अग्नि मैली होती है। खाली ज्ञान सुनाते सुनाते अहंकार की मिट्टी आ गई, कंपैरिजन की मिट्टी आ गई, मैं बड़ा तो पानी मैला हो गया। राम तेरी गंगा हो गई मैली, पाप धोते धोते। अग्नि मैली नहीं होती, शुद्ध करती है। तो लगन की अगन हमको लगी है, इसीलिए तो आप तपस्या करने के लिए आए हैं। लगी लगन अब ऐसी, हमें तपस्या करना है। तो ये ध्वानी नशे की बातें हैं। भगवान हमको चैतन्य फूल बना रहे, गुलाब का फूल, कमल का फूल बना के गुलाब का फूल बना दिया, गुलाब का फूल बना के सूर्यमुखी बना दिया। सूरजमुखी हो ना सभी, सूरज की खूबी क्या है, सूरजमुखी के फूल की खूबी क्या है, जिधर जिधर सूरज घूमता है उधर उसका मुख घूमता है। बाबा के सन्मुख, बाबा मेरे सन्मुख, ये रूहानी नशा है। योग में क्या है, बाबा के सामने बैठा हूं, बाबा मेरे सामने बैठा है, इसका नाम योग है ना। बाबा मुझे दर्शन मूर्त बना रहे है, मैं बाबा का दर्शन करके सत्यम शिवम सुंदरम की सुंदरता का अनुभव कर रहे हूं। वही सत्यनारायण बनते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम की का दर्शन करते करते, स्वदर्शन करते करते, स्वदर्शन चक्रधारी बनते बनते, कमल फूल समान बन जाते। फिर ज्ञान रूहानी नशे से, निश्चय से, कल्याण की भावना से सुनाते हैं, हम कल्याणकारी बाबा के बच्चे हैं, मैसेंजर्स हैं। बाबा ने हम बच्चों को बाबा का संदेश देने का संदेश वाक बनाया, रूहानी सेना के सैनिक बना दिए। तो जो बाबा ने टाइटल दिए हैं, एक एक टाइटल ये रूहानी नशा चढ़ाता है, और हर बात की धारणा प्राप्ति खुशी देती है, खुश रहते हैं, खुश नसीब हैं, और दूसरों को भी सुख का रास्ता बताते हैं। खुशी का लेन देन है, दुख लेने का संस्कार भी खत्म हो गया, दुख देने का संस्कार भी खत्म हो गया। इसलिए बाबा कहते हैं, ना दुख दो ना दुख लो। देने का फिर भी ध्यान रहता है, नहीं देवे, पर लेने का ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि सारे अंग खुले हुए, अंतर्मुखी नहीं। अंतर्मुखियों में तो ये बाहर की आंखें का देखने का विधि बदल जावे, बाहर मुखियां तो बाहर तो दुख की दुनिया है, अंदर मंदर है। तो मन को बाबा ने मंदर बना दिया, अंदर गए अंतर्मुखी हुए, मंदर अभी बनेगा। अभी जिसने मन को मंदर बनाया उनकी मंदर में मूर्ति पूजा होगी, मंदिर में मूर्ति, चौराहे की मूर्ति की पूजा नहीं होती। थोड़े तब कोई फूल चढ़ा देता है, ऐसे नमस्ता करके चला जाता है। इसलिए मंदिर, मन को मंदिर बनाए, घर को आश्रम बनाए, तो सदा सेंटर पर रहेंगे। मैं तो सेंटर पर, तो सेंटर पर तो मुझे सिर्फ जाने का थोड़ा सा समय मिलता है। बाबा कहते मैंने सेंटर तेरे को दे दिए, तो सेंटर में रहना। तो हम आत्माएं कहां रहती हैं, किस स्थान पर रहती हैं? तो बाबा ने अपने दिल में बिठाया है, बाबा ने अपने नैनों में बिठाया है, बाबा ने विश्व का मालिक बनाया है, बाबा ने एक स्वराज अधिकारी बनाया है। तो सब टाइटल्स याद रखते हैं, टाइट बंधन नहीं बनता, संबंध का सुख मिल जाता है। इसीलिए रूहानी नशा है, रूहानी निश्चय भी है, और निशाना भी पक्का है। रूहानी नशा, अंदर की सचमुच की खुशी सुख, सतो प्रधान सुख मिलता है तो खुशी सदा रहती, सच्ची खुशी है वो, आंतरिक खुशी, आनंद देने वाली खुशी है। ओम शांति।